الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم الست بربكم قالوا بلى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے انسانوں کے اس دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے عالم ارواح میں آدم علیہ السلام کی پشت پر اپنی قدرت کا دایاں ہاتھ پھیرا، اس سے ان کی اولاد نکلی، مرد عورتیں جن کے چہرے سفید تھے، قد چھوٹے تھے، مگر خرب ہا خرب جتنے قیامت تک پیدا ہونے والے تھے سب برآمد ہوئے. پھر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا بایاں ہاتھ پھیرا، پھر ان کی اولاد برآمد ہوئی مگر چہرے سے آتے. اس وقت اللہ رب العزت نے ان سے ہم کلامی فرمائی اور ان سے کہا، الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے یہ اقرار کیا. حدیث مبارکہ میں ہے کہ چونکہ انسانوں کو ہم کلامی کا کبھی موقع نہیں ملا تھا، تو جب پروردگار عالم نے پوچھا الست بربکم تو سب حیران تھے. سب سے پہلے محسن انسانیت سید الاولین والآخرین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے فرمایا بلا. پھر ان کے بعد ساری مخلوق نے بھی بلا کا لفظ کہا، تو آپ معلم اول بھی ہیں. اب اس موقع پر کلمہ عیانا، اللہ رب العزت نے ان پر تجلی بھی فرمائی، سب کو اپنا دیدار عطا کیا اور سب سے ہم کلامی بھی فرمائی. یہ ہم کلامی اور پھر دیدار، یہ محبت کی بنیاد ہوتے ہیں. شریعت کا حسن دیکھیے کہ شریعت نے کہا کہ اگر کسی وقت عورت کو پردے کے پیچھے غیر محرم عورت سے بات کرنی پڑے، فرمایا تخدعن بالقول، فلا تخدعن بالقول. اے نبی الاسلام کی بیوی ہو، آواز میں لوچ نہ ہو، نرمی نہ ہو، سختی ہو، سنجیدگی ہو. اس لیے کہ سنجیدگی سے بات کریں گی تو دوسرے نے دو باتیں کرنی ہوگی تو ایک ہی کرے گا. بات سے بات نہیں بڑھے گی. جب آواز میں نرمی آ جاتی ہے پھر بات سے بات بڑھتی ہے. تو شریعت نے دیکھو، نپ دی ایول ان دی بڈ، شروع سے برائی کو کچل دو. بات بڑھ ہی نہ سکے، فرمایا تم ذرا جچی تلی آواز میں جواب دو تاکہ دوسرا مرد تم سے زیادہ فالتو بات ہی نہ کر سکے. اس لیے کہ کلام جب ہوتا ہے تو یہ ابتدا ہوتی ہے. تو اصول یہ ہے کہ بات سے بات بڑھتی ہے، تو شریعت نے منع کر دیا. اور یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ جب بات ہونے لگ جائے تو پھر دیکھنے کو بھی دل کرتا ہے. چنانچہ 124,000 انبیاء کرام، مگر کسی نے اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں کہا کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، سوائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے. وہ کیوں؟ وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ ہم کلامی فرماتے تھے. تو ہم کلامی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ دیکھنے کو دل کرتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب یارنی انظر الیک، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو بات سے بات بڑھتی ہے، نمبر ایک. नंबर दो कि बात तक बात नहीं रहती, फिर देखने को दिल जाता है। तो शरीयत ने कहा कि देखो गैर महरम मर्द और औरत का मामला है, निगाहें भी नीची रखो, मत देखो, बात भी ना करो, और अगर करने की जरूरत भी पेश आए तो जची तुली आवाज, ताकि अगले को ज्यादा बात करने का मौका ही ना मिले। अब यहां पर तमाम रूहों को हम कलामी भी नसीब हुई, अल्लाह ताला का दीदार भी नसीब हुआ, तजल्ली भी नसीब हुई, कल्लमा हुआ या ना, तो फिर बात और आगे बढ़ी। चुनाचे हम कलामी से और देखने से दिल में मोहब्बत आती है, लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर इंसान के दिल में यौम अलस्त अपनी मोहब्बत का बीज डाल दिया था, हर इंसान के दिल में। इसलिए फरमाया कि हर इंसान फितरत इस्लाम के ऊपर पैदा होता है। ये फिर आगे उसके वालदैन हैं, माहौल है कि वो किस दीन को अपना लेता है। तो हर इंसान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी मोहब्बत का बीज डाल दिया। उस दिन दो नेमतें मिली थी हर इंसान को, एक नेमत मिली हम कलामी की और दूसरी नेमत मिली दीदार की। और दो ही बर्तन है इंसान के पास, एक बर्तन का नाम है धड़कता हुआ दिल, ये इश्क इलाही का बर्तन है, और एक का नाम है फड़कता हुआ दिमाग, ये इल्म इलाही का बर्तन है। तो सोज़े इश्क भी मिला और कैफे इल्म भी मिला, ये दोनों नेमतें इंसान को वहां से मिली। चुनाचे हर इंसान फितरी तौर पर हुस्न का कदरदान है। हुस्न से मुराद सिर्फ खूबसूरत चेहरा नहीं, कोई भी चीज जिसमें रेशो प्रोपोर्शन ठीक हो, अच्छा हो, वो देखने में हर बंदे को अच्छी लगती है। बिल्डिंग हो तो अच्छी लगती है, कोई सीनरी हो तो देखने में अच्छी लगती है, कहीं कारपेट ऐसा बना हो तो देख के अच्छा लगता है, ड्रेस अच्छा लगता है, कोई शख्सियत ऐसी हो तो अच्छी लगती है। तो फितरी तौर पर अल्लाह ने हर इंसान को हुस्न का कदरदान बना दिया। इसको हज़रत शेख अल हदीस रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, शाहिदे बज़्मे अज़ल ने एक निगाह नाज से, शाहिदे बज़्मे अज़ल ने एक निगाह नाज से इश्क को इस अंजुमन में आशकारा कर दिया। एक निगाह डाली, एक तजल्ली डाली, सारे इंसानों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इश्क का मिजाज अता फरमा दिया, हर बंदे को ये अल्लाह ने अता फरमा दिया। चुनाचे एक और शेर लिखते हैं, बस एक बिजली सी पहले कौन दी, फिर इसके आगे खबर नहीं है, मगर जो पहलू को देखता हूं तो दिल नहीं है, जिगर नहीं है। इंसान अपना दिल दे बैठा अपने परवरदिगार को। हजरत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह एक और शेर लिखते हैं अपनी किताब में, अजल से हुस्न परस्ती लिखी थी किस्मत में, मेरा मिजाज लड़कपन से आशकाना है। बच्चे छोटे होते हैं ना तो एक दूसरे को कहते हैं कि हम एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, पलक नहीं छपकनी, तो वो देखते हैं कितना नॉन स्टॉप हम पलक छपके बगैर देख सकते हैं। इस खेल का नाम रखा हुआ है आंखें लड़ाना। तो हज़रत शेख हदीस रहमतुल्लाह शेर फरमाते हैं कि मेरी तिफली में शान इश्क बाजी आशकारा थी, यानी बचपन में ही मेरी तिफली में शान इश्क बाजी आशकारा थी, अगर बचपन में खेला खेल तो आंखें लड़ाने का, कि बचपन में ही आंखें लड़ाने का खेल देखा। कहीं कौनों मकामे जो न रखी जा सकी ऐ दिल, गजब देखा वो चिंगारी मेरी मट्टी में शामिल की। इंसान को जो फजीलत मिली वो इस सोज़े इश्क की वजह मिली। आप गौर फरमाइए कि फरिश्तों में इबादत की सलाहियत है, मगर इश्क इलाही की पुड़िया उनके पास नहीं है, ये फकत इंसान को हासिल है। इंसान के अंदर मोहब्बत इलाही का जज्बा, वलवला, दर्द मोहब्बत होती है, ये अल्लाह के लिए उदास होता है, अल्लाह के नाम पर सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार होता है। ये सिफत अल्लाह ने फकत इंसान को अता फरमाई, फरिश्तों में ये सिफत नहीं है। वो तो फरमा बरदार बंदे हैं, ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युमरुन, रोबोट जैसे काम कर रहे होते हैं, अल्लाह के हुक्म पर वो काम में लगे हुए होते हैं। ये मोहब्बत का जज्बा, इश्क का जज्बा, ये अल्लाह ने फकत इंसान को अता फरमाया। चुनाचे ये मोहब्बत एक विजदानी कैफियत है, हर इंसान को अपनी जिंदगी में इश्क से वास्ता पड़ता है, हर इंसान को अपनी जिंदगी में इश्क से वास्ता पड़ता है। ये अलग बात है खालिक का हो या मखलूक का हो। खालिक के इश्क से मुराद वो तमाम मोहब्बतें जो शरीयत के मुताबिक हैं, अल्लाह की मोहब्बत, नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, सहाबा की, औलिया की, माँ बाप, मियाँ बीवी, ये तमाम मोहब्बतें जो शरीयत में जायज हैं इनको अल्लाह की मोहब्बत कहते हैं, और जो दायरे शरीयत से हटकर हैं, नफसानी, शैतानी, शहवानी, उनको मखलूक की मोहब्बत कहते हैं। तो वास्ता तो हर बंदे को पड़ता है, दिल बहरे मोहब्बत है, मोहब्बत ये करेगा, लाख इसको बचा तो ये किसी पर तो मरेगा, पत्थर से हो, खुदा से हो, या फिर किसी से हो, आता नहीं है चैन मोहब्बत किए बगैर। इसकी मिसाल यूं समझ लीजिए कि या तो कमरे के अंदर रोशनी होगी, अगर रोशनी ना हुई तो अंधेरा जरूर होगा, इसी तरह या तो इंसान के दिल में अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत की रोशनी होगी, अगर वो ना हुई तो मखलूक की मोहब्बत का अंधेरा जरूर होगा। कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि मेरे दिल में तो किसी का इश्क है ही नहीं। हाँ, इसका फितरी तौर पर खमीर हर इसका मादा फितरी तौर पर हर इंसान के खमीर में रख दिया, जब माहौल मुनासिब मिलता है तो फिर वो फलता फूलता है। जैसे बीज होता है ना, बीज को मुनासिब जमीन मिल जाए, माहौल मिल जाए तो दरख्त बन जाता है, फल फूल देता है, मुनासिब माहौल ना मिले तो बीज उल्टा मर जाता है। इसी तरह मोहब्बत का लफ्ज हब्बा से बना है, और हब्बा अरबी में दाने को कहते हैं, ये दाने हैं। इसको अगर नेकी का माहौल मिल जाए तो इंसान के अंदर अल्लाह की मोहब्बत का बीज वो फिर फल फूल देने शुरू कर देता है, नेकियों के आमाल जाहिर करता है, और अगर माहौल मुनासिब न मिले तो ये फिर बीज मर जाता है। चुनाचे समुंदर के अंदर जब चांद की पहली तारीख होती है तो समुंदर बिल्कुल काम एंड क्वाइट होता है, कोई लहरें नहीं होती, लेकिन जब चौदहवीं का चांद होता है ना तो मद्द जजर होती है, हाई टाइड उसको कहते हैं। हत्ता के इसके बाकायदा स्केजुअल बने हुए हैं, और जो बहरी जहाज चलते हैं वो इसका ख्याल रख के चलते हैं कि ऐसा ना हो कि कहीं हाई टाइड में जहाज किसी एक्सीडेंट का शिकार ना हो जाए, डूब जाते हैं जहाज। तो देखिए, जब चांद पूरी आबोताब पे होता है तो समुंदर का पानी उछलता है। क्यों उछलता है? उसकी लहरें होती हैं, मकनतीसी लहरें, उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, वो खींचती है। तो जिस तरह चांद की मकनतीसी लहरें समुंदर के पानी को अपनी तरफ मुतवज्जे करती हैं, इसी तरह अगर चांद सामने हो, ये चांद जैसी कोई सूरत सामने हो, तो बंदे के दिल में भी फिर मोहब्बत की लहरें उठती हैं। अब यहां से एक इश्काल का पता चला कि एक सहाबी थे सैयदना हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला, एक दिन अपने घर में थे, कहने लगे नाफ़का हंज़ला, हंज़ला मुनाफिक हो गया, और ये कहते हुए नबी इस्लाम की खिदमत में चल पड़े। रास्ते में सिद्दीक अकबर ने मिले, पूछा क्या हाल है, कहने लगे नाफ़का हंज़ला। भाई क्यों? कि जो नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक सोहबत में दिल की कैफियत होती है, घर जाते हैं तो वो नहीं होती, तो ये तो मुनाफ़कत है, ये तो दुरंगी है, तो सिद्दीक अकलान कहने लगे कि हाँ ये तो हमारे साथ भी होता है, और पूछते हैं। चुनाचे नबी इस्लाम की खिदमत में हाजिर हुए, एला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ ये मामला। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हुज़ैफा जो कैफियत मेरी सोहबत में तुम्हारे दिल की होती है अगर हर वक्त रहे तो फरिश्ते रास्ता चलते तुमसे मुसाफा करने लग जाए। ये तो गाहे गाहे कहीं कहीं होती है। तो यहां तक तो बात समझ आ गई। अब उलमा ने लिखा कि देखें सहाबत लानुम की कैफियत में कोई फर्क नहीं था कि वहां मोहब्बत ज्यादा थी, घर आके मोहब्बत कम थी। फर्क ये था कि जब नबी अलैहिस्सलाम की सोहबत में जाते थे तो वहां हुस्न का चांद सामने होता था, तो सहाबा के दिल में मद्दोजजर होती थी मोहब्बत की। और जब घरों में आ जाते थे तो जैसे पहली तारीख को समुंदर काम एंड क्वाइट होता है, दिल की वो कैफियत हो जाती थी। यहीं से एक मसला और भी वाजे हुआ। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल ईमान यजीद व यनकुस। और इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल ईमान ला यजीद व ला यनकुस। अब दोनों हजरात ने अपने अपने दलाइल दिए। इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि उसकी कमियत बढ़ती भी है घटती भी है, और उस पर उन्होंने दलाइल दिए। इमाम आजम रहमतुल्लाह ने फरमाया, नहीं नहीं, मिकदार वही रहती है, उसकी कैफियत घटती बढ़ती है। चुनाचे इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह की जो बात थी उसको उलमा ने कहा कि वो ज्यादा ठोस थी, अजबत थी मजबूत की बजाय। और उसकी भी यही दलील थी कि इमाम साहब कहते हैं कि जिस तरह समुंदर का पानी पहली तारीख को भी मिकदार में उतना ही होता है और 14 तारीख को भी मिकदार में, सिर्फ मद्दोजर का फर्क होता है। यही ईमान की कमी बेशी है कि इंसान अपनी ईमान की कैफियत में कभी कमी और बेशी महसूस कर रहा होता है, मिकदार में कमी बेशी नहीं होती, वो वही होती है। इसलिए शरीयत ने कहा कि तुम अपनी निगाहों की हिफाजत करो। जो निगाहों की हिफाजत करेगा यकीनन वो पाकदामनी की जिंदगी गुजारेगा, जिसकी नजर महफूज नहीं होगी वो पाकदामनी की जिंदगी नहीं गुजार सकेगा। इमाम आजम इमाम रब्बानी मुजद्दिल सानी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि आंख का देखना इब्तदा है और फिर जिना का इर्तिकाब ये उसकी इंतहा है। जो इंतहा से बचना चाहता है उसे इब्तदा से बचना पड़ेगा, नहीं बचेगा तो फिर इंतहा तक भी पहुंच जाएगा। इसलिए फरमाया कुल लिल मुमिनीन यगुद्दु मिन अबसारिहिम, ईमान वालों से कहो अपनी निगाहों को नीचा रखें। इस पर किसी शायर ने शेर कहा कि जिस गिजा में भी हो नमक शामिल वाजिबुल एहतियात होती है। बाज गिजाएं होती हैं ना उनमें नमक होता है, तो नमक होने की वजह से वो ब्लड प्रेशर वाले बंदे को नुकसान देती हैं, हाई ब्लड प्रेशर कर देती हैं। तो डॉक्टर लोग कहते हैं कि भाई आप सॉल्ट इस्तेमाल न करें। तो इस पर शायर ने शेर कहा कि जिस गिजा में भी हो नमक शामिल वाजिबुल एहतियात होती है, जिनकी सूरत में हो नमक शामिल वाजिबुल एहतियात होते हैं। कुछ सूरतें भी होती हैं उनमें भी नमकीन सूरतें होती हैं। नमकीन क्यों कहा कि बार बार देखने को दिल करता है, मीठा बार बार नहीं खाने को दिल करता, मीठे से बंदा तंग आ जाता है। चुनाचे हम बचपन में अपने स्कूल में अंग्रेजी की किताब में स्टोरी पढ़ते थे, एक बादशाह की कई बेटियां थीं, उसने पूछा कि कौन मुझसे ज्यादा मोहब्बत करता है। किसी ने कहा मैं शहद की तरह, किसी ने कहा मैं मिठास की तरह, किसी ने कोई मीठी चीज, सब ने मीठी चीजों का तذکرہ किया। एक बेटी ने कहा अबू मुझे आपसे मोहब्बत है नमक की तरह। तो बाप को बड़ा गुस्सा आया, उसने उसको सजा दी। खैर सजा उसने बर्दाश्त कर ली। फिर एक वक्त आया कि सब बच्चियों की शादी हो गई। अब जब शादी हो गई तो एक दिन बादशाह अपनी उस बेटी के घर आया जिससे उसको कहा था कि मुझे आपसे नमक की तरह मोहब्बत है। तो खैर बच्ची ने अपने बाप के लिए बहुत दर्जनों खाने बनाए, सब मीठे। खैर एक वक्त तो उसने खा लिए खाने, जब दूसरी दफा फिर मीठा, वो तंग आ गया। कहने लगा बेटी हर वक्त तो मीठा नहीं खाया जाता, नमक खाने को दिल करता है। कहने लगे अब्बा जान मैंने क्या कहा था। सारी उम्र नमकीन खाना खाते रहेंगे तंग नहीं होंगे, मीठे से तंग हो जाएंगे, नमक से तंग नहीं होंगे। तो नमकीन चीज को बार बार खाने को दिल करता है। इसलिए इस दुनिया में हर इंसान के दिल में अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ मोहब्बत होती है, सिर्फ माहौल मिलने की बात होती है। आप देखें, कोई बहुत ही गुनाहगार इंसान हो, गुनाहों में लिथड़ा हुआ, उसको भी जरा नेकी के माहौल में आप लेके आए, आप देखें उसके अंदर अल्लाह की मोहब्बत का जज्बा बेदार होना शुरू हो जाएगा। इसलिए नबी इस्लाम ने फरमाया, ख्यारुकुम फिल जाहिलियत ख्यारुकुम फिल इस्लाम इज़ा फकीहु, कि जो तुम में से बदकारी में आगे बढ़े हुए थे जाहिलियत में, नेकी पर आएंगे तुमसे आगे बढ़ जाएंगे जब वो समझ पा जाएंगे। तो जज्बा तो अंदर होते हैं ना बंदे के, तो ये मोहब्बत का जज्बा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर बंदे के दिल में रखा, सिर्फ इसको मुनासिब माहौल मिलने की जरूरत होती है। चुनाचे इस कायनात में जितना अल्लाह रब्बुल इज्जत को चाहा गया, जितना अल्लाह ताला से मोहब्बत की गई, जितना टूट के अल्लाह से प्यार किया गया, जितना तन्हाइयों में अल्लाह को याद करके आंसू बहाए गए, जितना रातों को अल्लाह को पुकारा गया या अल्लाह के लिए इंसान उदास हुआ, कोई दूसरी हस्ती ऐसी नहीं कि जिससे इतनी मोहब्बत की गई हो। ये फकत अल्लाह की शान है। हम हुए तुम हुए के मीर हुए, उसकी जुल्फों के सब असीर हुए, सब अल्लाह के चाहने वाले। नदा नमा गुले खंदा च रंग बूदा रद, के मुर्ग हर चमने गुफ्त गुए उदारद। मैं नहीं जानता कि उस मुस्कराने वाले फूल की रंग और खुशबू कैसी है कि बाग के हर परिंदे को मैंने उसी फूल की गुफ्तगू करते हुए सुना है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का भी यही मामला, जितने आप सब हजरात यहां आए बैठे हैं, अल्लाह की मोहब्बत आपको खींच के लाई है। हर बंदे के दिल में होती तो है ना, हां कम या ज्यादा ये अलग चीज है। अब देखिए, पानी अगर आप गर्मी के मौसम में टैप वाटर को लें, आप कहेंगे जी ठंडा पानी है, मुझे गर्म चाहिए। अब आम हालात में बर्फ के बगैर था तो उसको गर्म कहा, फिर एक वो भी पानी गर्म होता है जिससे हाथ धुलवाते हैं, नीम गर्म, और एक चाय के लिए भी खौलता हुआ पानी गर्म। तो तीनों के लिए लफ्ज़ तो गर्म का इस्तेमाल हुआ, मगर एक कम गर्म था, एक दरमियाना गर्म था, एक ज्यादा गर्म था। इसी तरह मोहब्बत हर ईमान वाले के दिल में अल्लाह की होती है। जिसने भी कलमा पढ़ा उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत मौजूद है। बस इतना फर्क है कि किसी के दिल में जरा कम होती है, किसी के दिल में दरमियानी होती है, और किसी के दिल में बहुत गर्म होती है, ठाठे मार रही होती है। यहीं से फर्क पड़ जाता है। और इन महफिलों में, मस्जिदों में आके हमने इसी मोहब्बत को और बढ़ाना होता है, ताकि एक जज्बा मोहब्बत का दिल में आ जाए और इंसान के लिए फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत करनी आसान हो जाए। अगर ये मोहब्बत इलाही इंसान के दिल में ना हो तो फिर इंसान की कीमत ही क्या है। चुनाचे फरमाया, कुछ और ही नजर आता है कारोबार जहां, निगाह शौक अगर हो शरीक बेनाई, निगाह शौक मुयस्सर नहीं अगर तुझको, तेरा वजूद है कल्ब नजर की रुसवाई। अगर इंसान के अंदर इश्क वाली नजर ही नहीं तो फिर इसके अंदर है क्या, फिर इसको दूसरे जानदारों पर फजीलत किस लिहाज से है। इसीलिए तो है कि ये अल्लाह रब्बुल इज्जत से मोहब्बत करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के ऊपर अपनी जान देता है। अकलो दिलो निगाह का मुर्शिद अव्वली है इश्क, अकलो दिलो निगाह का मुर्शिद अव्वली है इश्क, इश्क न हो तो शरा दीन बुतकदाए तसव्वुरात। अगर दीन से मोहब्बत इलाही को निकाल दिया जाए तो पीछे चंद तसव्वुरात के और क्या बचता है। तो असल चीज तो अल्लाह की मोहब्बत है, ये पूरी शरीयत का निचोड़ है। चुनाचे मोमिन की जिंदगी को देखें, उसमें आशिक की तमाम अलामतें पाई जाती हैं। मसलन कोई भी आशिक होगा, सबसे बड़ी अलामत कि वो बार बार महबूब के घर की तरफ चक्कर लगाएगा, उसका गुजारा नहीं होता। मोमिन को देखो, कम अज कम दिन में 5 मरतबा अपने घर से अल्लाह के घर की तरफ, जैसे अजान सुनी भागता है, एक नमाज पढ़ी दूसरी अजान सुनने के लिए इंतजार। नबी अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे, अरहनी या बिलाल, बिलाल मेरी आंखों को ठंडक पहुंचा दे, अजान देकर मेरे दिल को ठंडक दे दे। नबी अलैहिस्सलाम को अजान इतनी अच्छी लगती थी, चुनाचे सईदा शरीकर लाना फरमाती हैं, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युहद्दिसुना व नुहद्दिसुहु, कि नबी अलैहिस्सलाम हमसे गुफ्तगू कर रहे होते थे, हम नबी अलैहिस्सलाम से गुफ्तगू कर रहे होते थे, लेकिन जैसे ही अजान की आवाज आती थी, का अन्नहु लम यारिफुना व लम नारिफुहु, ऐसे नबी अलैहिस्सलाम अजान की आवाज सुन के हो जाते थे, वो हमें नहीं पहचानते, हम उनको नहीं पहचानते, बेगाना हो जाते थे। क्यों? उस वक्त नमाज के लिए मस्जिद में तशरीफ ले आते थे। एक और हदीस मुबारक में फरमाया कि वह इज़ा समे अल अज़ान कअन्नहु ला यारिफु अहद मिनन नास, नबी अलैहिस्सलाम ऐसे होते थे किसी बंदे को पहचानते ही नहीं है, जैसे बस महबूब की आवाज आ जाती थी कानों में, अल्लाह अकबर, अब हर तरफ से हट कट के मस्जिद की तरफ जाने की तैयारी हो जाती थी। तो मोमिन दिन में 5 मरतबा अपने महबूब के घर की तरफ वुजू करके चलता है। हदीस मुबारक में है, जो वुजू करके मस्जिद की तरफ चले ऐसा ही है जैसे हाजी हज का एहराम बांध कर अल्लाह के घर की तरफ जा रहा होता है। तो देखो चक्कर लगे ना मस्जिद के, और मस्जिद में आके पुरसकून, अल्मुमिनु फिल मस्जिद कस्समा के फिल्मा, जैसे पानी में मछली पुरसकून हो जाती है, मोमिन मस्जिद में आता है तो इस तरह पुरसकून हो जाता है, क्योंकि महबूब का घर है, यहां अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत का जज्बा पूरा होता है। हमारे हमारे अकाबिर नमाज को हाकिम वक्त की बेगार समझ के नहीं पढ़ते थे, हमारे अकाबिर नमाज को हाकिम वक्त की बेगार समझ के नहीं पढ़ते थे, बल्कि सबबे लिकाए यार समझ के पढ़ा करते थे। तो अल्लाह से मुलाकात का जरिया है। आज जिनको ताल्लुक होता है, थोड़ी देर बाद फोन, फिर फोन हटता है, कुछ काम किया ना किया, दोबारा फिर फोन, ये बार बार फोन, कभी फोन को देख रहे होते हैं, मैसेज आया कि नहीं आया, कोई मिस्ड कॉल आई कि नहीं आई। तो जिस तरह महबूब के फोन का इंतजार होता है, मोमिन को अल्लाह रब्बुल इज्जत के घर पहुंचने के लिए अजान सुनने का ऐसे इंतजार हुआ करता है। एक नमाज पढ़ते हैं, दूसरी नमाज का इंतजार शुरू हो जाता है, तीसरी नमाज का इंतजार, और जब नमाज पढ़ता है तो वो तो फिर महबूब से हम कलामी और मुलाकात, महबूब का दीदार होता है। इसलिए नमाज में फरमाया, अंताबुदल्लाह का अन्न कतरा फइल्लम तकुन तराहु फइन्नहु यराक, कि अव्वल तो नमाज ऐसे पढ़ो जैसे तुम अल्लाह को देखते हो, ये कैफियत हासिल नहीं तो कम से कम ऐसे पढ़ो जैसे वो तुम्हें देख रहा है। तो भाई महबूब के सामने तो है ना, तो दिन में 5 दफा मशक करवाई कि जैसे महबूब के सामने, हम महबूब को देख रहे हैं, महबूब हमें देख रहे हैं। 5 मरतबा इस मशक को करके भी इंसान का दिल नहीं भरता, दिल चाहता है कि और ज्यादा के लिए फिर वो नफलों को बहाना बना लेते हैं। चुनाचे कभी तहियतुल वुजू, तहियतुल मस्जिद, कभी इशराक, कभी सलातुल जुहा, कभी अवाबीन, कभी तहज्जुद, ये तमाम नवाफिल असल में मोहब्बत के उस जज्बे को पूरा करने का जरिया होते हैं। हम लोग नवाफिल पढ़ते हैं सवाब की वजह से, भाई इशराक पढ़ लो, एक हज उमरे का सवाब मिलेगा, तो हम तो सवाब की खातिर पढ़ते हैं, लेकिन जो अल्लाह वाले होते हैं वो सिर्फ सवाब को सामने नहीं रखते, वो तो अल्लाह की मोहब्बत में डूब के उसकी इबादत कर रहे होते हैं। किसी ने क्या अच्छी बात कही, बंदगी से हमें तो मतलब है, बंदगी से हमें तो मतलब है, हम सवाब व अजाब क्या जाने, किसमें कितना सवाब मिलता है, इश्क वाले हिसाब क्या जाने। मोहब्बत वालों को क्या पता क्या सवाब कितना होता है, वो तो अल्लाह की मोहब्बत में पढ़ रहे होते हैं। हजरत शेख अब्दुल अहद रहमत अब्दुल वाहिद रहमतुल्लाह अलैह के सामने तज़किरा हुआ कि जन्नत में नमाज नहीं होगी, वो रोने लग गए। हजरत रो क्यों रहे हैं, फरमाने लगे अगर जन्नत में नमाज नहीं होगी तो मजा ही क्या आएगा, कितना मजा आता होगा। कि फरमाते हैं कि जन्नत में नमाज नहीं होगी तो जन्नत में मजा ही क्या आएगा। मुफ्ती हसन गंगोई रहमतुल्लाह अलैह लंबा सजदा करते थे, किसी ने कहा कि हजरत इतना लंबा सजदा, तो मान लेंगे जब मैं सजदा करता हूं मेरी कैफियत ऐसी होती है मैंने अपने आका के कदमों पर सर रख दिया, मेरा सर उठाने को दिल नहीं चाहता। अल्लाह अकबर कबीरा। तो जिनको नमाज की कैफियत हासिल होती है वो फिर नमाज को बहाना बनाते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत से मुलाकात का। हजरत हाजी साहब के सामने किसी नौजवान ने जन्नत के तज़किरे शुरू किए और हूरों कसूर की बातें की, खामोशी से सुनते रहे। जब सब बातें सुन ली तो आखिर पे फरमाने लगे अगर क्यामत के दिन मुझ पर अल्लाह का फजल हो गया तो मैं तो अर्ज करूंगा अल्लाह मुझे अपने अर्श के नीचे मुसल्ले की जगह अता फरमा दी, मुसल्ले की जगह अता फरमा दी। नमाज में ऐसा मजा मिलता है उन लोगों को। अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए नमाज एहतमाम से पढ़ें और नवाफिल जहां पढ़ने का मौका मिले कभी ना छोड़ें। नवाफिल जहां पढ़ने का मौका मिले उसको ना छोड़ें। दो वजूहात हैं, एक तो ये कि मालूम नहीं किस जगह का किया हुआ सजदा मेरे अल्लाह को पसंद आ जाए, हम नहीं जानते तो क्या पता कौन सा सजदा पसंद आ जाए। इसलिए नफल का मौका मिल रहा है तो जरूर पढ़ो, छोड़ना नहीं चाहिए। और दूसरी बात ये कि जो नौकर जाती वक्त में मालिक का काम करता है ना तो मालिक को ज्यादा प्यारा लगता है। देखें ड्यूटी में तो हर कोई काम करता है। अब आपका अगर एक खादिम कहे ओ जी मैं आते हुए आपके लिए बड़ा अच्छा शहद मिल रहा था, मुझे आधा घंटा लगा मैं शहद लेके आया हूं, लोग पूरे दिन की ड्यूटी से वो मोहब्बत दिल में नहीं आनी जो उस आधे घंटे शहद लाने की वजह से दिल में मोहब्बत आ जाएगी कि इसने जाती वक्त में मेरा काम किया। इसलिए एक होता है जाबते से लेना और एक होता है राबते से लेना। दो बातें होती हैं, एक होता है जाबते से लेना और एक होता है जाबते से तो थोड़ा ही मिला करता है, जाबते के मुताबिक मिलता है। मिसाल के तौर पे आपने घर में ड्राइवर रखा और उसकी तनख्वाह आपने मुतय्यन कर दी जी कि आपको इतनी मिलेगी, तो आप हर महीने उसको उतनी तनख्वाह दे देते हैं। एक दिन आपने देखा कि वो ड्राइवर बड़ा परेशान, तो आप पूछते हैं क्या हुआ, वो कहते हैं मैं बहुत परेशान हूं, बेटी की शादी है, तारीख करीब आ गई, मैं गरीब आदमी हूं कुछ बना नहीं सका, अब समझ नहीं आ रही कि मैं बेटी के हाथ कैसे पीले करूं, कैसे उसको रुखसत करूं। अब उसने दो मिनट आपके साथ अपना राबता किया तो पहले हर महीने आप उसको 1000 पाउंड देते थे बिलफर्ज, अब आप उसको माशाल्लाह 5000 पाउंड दे देंगे, अच्छा भाई जाओ बेटी की शादी करो। अब 2-4 मिनट की कीमत 5000 पाउंड तो नहीं है ना, लेकिन क्यों उसको दे दिया, उसने राबता किया। तो राबते से जो मिलता है वो बहुत ज्यादा होता है। अब एक मसला यहां से और समझ भी आ गया, बाज़ुकात कहते हैं कि जी दो नफल इशराक के पढ़ने से एक हज और एक उम्रे का सवाब, और जी हज पे तो बड़ा वक्त लगता है, पैसा लगता है, फर्ज होता है, तो हज और उम्रे का सवाब दो नफल पे, जी हां ये जाबते से नहीं वो बंदा ले रहा, ये बंदा राबते से अल्लाह से ले रहा है। जाती वक्त है ना इसका, कोई फर्ज तो नहीं है ना इशराक की नमाज पढ़ना। तो जब नफली वक्त में जाती वक्त में वो आका की खिदमत कर रहा है, अब आका की मर्जी है इन नफलों पे जितना चाहे इनाम अता फरमाए। तो नफलों को नहीं छोड़ना चाहिए, जहां मौका मिले जरूर पढ़ें, क्या पता किस जगह का सजदा मेरे अल्लाह को पसंद आ जाए। तो एक निशानी तो ये मिली मोमिन में कि दौड़ दौड़ के भाग भाग के अपने महबूब के घर के चक्कर लगाता है। दूसरी बात महबूब पे अपना माल लुटाना, दुनियादारों को देखा कहीं ताल्लुक होता है तो गिफ्ट भेजे जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, और माल लुटाया जा रहा है, शॉपिंग करवाई जा रही है। तो मोमिन को देखो, अल्लाह के हुक्म पे ज़कात भी दे रहा है, सदकात भी दे रहा है, अल्लाह के रास्ते में माल लुटा रहा होता है ना, दे रहा होता है ना अल्लाह के रास्ते में। तो मोमिन भी अल्लाह के नाम पे अपना माल लुटाता है। बल्कि हदीस मुबारक में है कि जब रमजान का महीना आता था, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों हाथों से माल अल्लाह के रास्ते में सदका फरमाया है। इतना सदका करते थे अल्लाह के रास्ते। तो मोमिन खुश होता है अल्लाह के रास्ते में अपना माल देकर। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बकरियों को चराते हुए आ रहे हैं, एक आदमी करीब से गुजरा और गुजरते हुए उसने ये पढ़ा, सुभान दिल मुल्क वल मलकूत, सुभान दिल इज्जति वल अजमति वल हैबति वल कुदरति वल किब्रिया वल जबरूत। जब उसने अल्लाह की तारीफ इतने अच्छे अल्फाज से की, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिल मचल गया। दिल ने कहा, एक मरतबा फिर अपने महबूब की बात सुनो, ए भाई जरा ये अल्फाज फिर कह दे। उसने कहा, जिसके बदले क्या देंगे? अच्छा भाई, आधा बकरियां का रेवड़ जो है ना वो आपका हो गया, ये अल्फाज कह दीजिए। उसने फिर कह दिए। अब जब दोबारा ये तारीफ सुनी तो दिल फिर मचल उठा। दिल ने कहा कि फिर सुने भाई, एक मरतबा और कह दीजिए भाई, अब क्या देंगे भाई, बकिया आधा रेवड़ भी आपका हो गया। उसने फिर ये कलिमात पढ़े। जब फिर कलिमात पढ़े तो दिल ने कहा, होती रहे सना तेरे हुस्न जमाल की, ए महबूब तेरे हुस्न की ये बातें करता रहे, अजमत की बात करता रहे, मैं सुनता रहूं, ए भाई एक मरतबा और कह दो। उसने कहा, अब तो बकरियां भी नहीं, अब क्या देंगे? फरमाया, इन बकरियों को चराने के लिए चराने वाले की जरूरत होगी, मैं तुम्हारी बकरियां चरा दिया करूंगा, तुम ये अल्फाज कह दो। जब ये कहा तो वो कहने लगा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुबारक हो, मैं फरिश्ता हूं, अल्लाह ने मुझे आपके पास भेजा था, जाओ मेरे खलील के सामने और जाकर मेरी तारीफ करो और देखो वो मेरे नाम के क्या दाम लगाता है। जिनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत होती है वो अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये सिफत भी मोमिन के अंदर बदरजे अतम पाई जाती है। तीसरा होता है भूखा प्यासा रहना, कि वाकई महबूब को मनाने के लिए कई मरतबा इंसान खाना पीना छोड़ देता है। हम घरों में देखते हैं, खामिन नाराज हो बीवी खाना छोड़ देती है, घरों में देखा है, कहती है नहीं मैं उस वक्त तक कुछ नहीं खाऊंगी जब तक आप राजी नहीं होंगे। इसी तरह मोमिन भी अपने रब को मनाने के लिए, रमजान के महीने में क्या होता है, पूरा महीना दिन के औकात में खाना पीना मोमिन अल्लाह को मनाने की खातिर छोड़ देता है। आगे पीछे देखो तो माशाल्लाह अय्याम बीस के रोजे रख रहा है, कभी सोमवार का रख रहा है, जुमेरात का रख रहा है, अल्लाह को मनाने के लिए। हमारे अकाबिर तो रोजे की काफी कोशिश किया करते थे, एहतमाम किया करते थे, एहतमाम करते थे। तो ये सिफत भी मोमिन के अंदर पाई जाती है, अल्लाह की खातिर भूखा प्यासा रहना। फिर एक चौथी सिफत है कि रातों को जागना। आप देखें जिनका कहीं ना कहीं ताल्लुक होता है, रातों को नींद नहीं आती, रात के 2 बजे भी जाग रहे होंगे, हैं? सुबह के वक्त भी जाग रहे होंगे, भाई नींद ही नहीं आती, तो नींद रूठ जाती है, नींद चली जाती है, रातों को जागते हैं। हमारे अकाबिर भी इसी तरह करते थे, अल्लाह की मोहब्बत में रातों को जागते थे। बल्कि किताबों में लिखा है कि हमारे अकाबिर रात के आने के इस तरह मुंतजर हुआ करते थे जैसे दुल्हा दुल्हन से मुलाकात के लिए रात का मुंतजर हुआ करता है। ऐसे वो रात के मुंतजर होते थे कि हम मुसल्ले पे आएंगे, अपने रब की इबादत करेंगे। तज़किरतुल हुफाज में एक अजीब बात लिखी कि एक नौजवान था, हाफिज कुरान था, और उसकी आदत थी कि वो रात को ईशा के बाद नवाफिल पढ़ता था और तहज्जुद तक कुरान पढ़ता रहता था, ये रोज की मामूल था उसका। अल्लाह की शान देखें कि उसने एक दिन निकाह किया, जब निकाह किया तो फिर बीवी के पास आया, बीवी से बातचीत हुई, तो बातचीत में दोनों ने कहा कि हम ऐसे करते हैं कि दो रकत नफल पढ़ के अपनी अज़दवाजी जिंदगी की फिर इब्तिदा करते हैं। कहने लगे हाँ बहुत अच्छा। चुनाचे खाविंद ने भी नीयत बांध ली, पीछे बीवी ने भी अलग नीयत बांध ली। अब बीवी ने तो जल्दी से दो रकत पढ़ ली और उन्होंने जो तिलावत शुरू की तो चूंकि एक मामूल था पूरी जिंदगी का, वो कुरान पढ़ते रहे पढ़ते रहे, उन्हें ख्याल ही ना रहा कि कोई मेरे इंतजार में है। जब मामूल के हिसाब से सलाम फेरा तो बीवी को बैठे देखा तो बीवी ने कहा आप खुद भी थके और आपने मुझे भी थका दिया। तो कहने लगे अच्छा अभी तो मैं फजर पढ़ने जा रहा हूं, फजर के बाद आऊंगा तो फिर मिलेंगे। ये कह के आ गए, फजर की नमाज पढ़ी, फजर में दोस्तों से मुलाकात होगी। अब दोस्त तो फिर यार होते हैं ना, पूछते हैं, किसी ने कहा सुनाओ मेहमान को कैसे पाया, झूठ का तो जमाना नहीं था कि झूठ बोल के कुछ कह देते। तो इन्होंने बता दिया अभी मुलाकात नहीं हुई। तो किसी ने कहा तू कैसा मर्द है पहली रात, कहते हैं कि बीवी से मुलाकात ही नहीं हुई। तो जब उन्होंने ताना दिया तब उस नौजवान ने कहा कि अल्लाह की कसम मैंने दो रकत की नियत बांधी थी, कुरान की लज्जत ने मुझे बात ही भुला दी कि बीवी मेरे इंतजार में बैठी। तो अल्लाह वाले भी अल्लाह की खातिर रातों को जागते हैं। मुझको न अपना होश ना दुनिया का होश है, बैठा हूं मस्त होके तुम्हारे जमाल में, तारों से पूछ लो मेरी रूदाद जिंदगी, रातों को जागता हूं तुम्हारे ख्याल में। अल्लाह की याद में रातों को जाग रहे होते हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रातों को इसी तरह जाग रहे। सईदा सिद्दीक लाना फरमाती हैं कि नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, मेरे पास लेट गए, कुछ देर बाद फरमाने ज़रीनी ऐ आयशा छोड़ मैं अपने रब की इबादत करता हूँ। फिर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्ले पे आए, फिर इतना रोए कि आपके आंसू के टपकने की आवाजें मुझे ऐसे लग रही थी जैसे बारिश के कतरों की गिरने की आवाज होती है। सईना इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के घर एक मरतबा नबी अलैहिस्सलाम भी तशरीफ लाए और सईदा हफ्सा रजी अल्लाह तआला अन्हा भी थी, उनकी बहन उमर लानो की बेटी। खाना खाया, देर हो गई, इब्ने उमर लानो ने ऑफर कर दी अल्लाह के वसल्लम यही आराम फरमा लीजिए। तो नबी अलैहिस्सलाम वही आराम फरमाने लगे कमरे में। अब उम्मुल मोमिनीन हफ्सा रजी अल्लाह तआला अन्हा भी साथ लेटी हैं, नबी अलैहिस्सलाम भी लेटे हैं। उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं कि कुछ देर के बाद मैंने देखा कि कोई माया चीज मेरे चेहरे के ऊपर गिर रही है। मैंने हाथ लगाया तो गरम गरम पानी आंसू। तो मैं हैरान, जब उठ के देखा तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू गिर रहे थे और मैं चूंकि साथ एक ही तकिए पे लेटी हुई थी तो वो मेरे चेहरे के ऊपर भी आ रहे थे। तो मैंने कहा माया की अल्लाह के विष्णु आप क्यों रो रहे हैं? तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हफ्सा तूने सुना नहीं, बाहर सहन में तेरा भाई अब्दुल्लाह इब्ने उमर तहज्जुद पढ़ रहा है और तहज्जुद में उसने अभी आयत पढ़ी कल्ला इन्नहुम अर रब्बिहिम यौम इज़िल लमहजूबून, कि क्यामत के दिन ये कुफार अल्लाह से हिजाब में होंगे, पर्दे में होंगे। ये आयत सुनकर मुझे रोना आ गया, अल्लाह मेरी उम्मत को हिजाब का अजाब अता न फरमाना। फिर फरमाया हफ्सा अना मुश्ताकुन वबी इश्तियाक, मैं मुश्ताक हूं, मैं अल्लाह का आशिक हूं, मेरे दिल में अल्लाह की मोहब्बत ने तड़प लगा दी। तो मोमिन तो अल्लाह की खातिर रातों को जागता है, इबादत में लगा रहता है। पांचवी खूबी कि कभी कभी महबूब को मनाने के लिए इंसान जिद करके बैठ जाता है कि जी बस मैं तो आपके कदमों में बैठा हूं, जब तक नहीं मानेंगे मैं कदमों में से नहीं उठूंगा। ये डेरे डालना ये भी मनाने का एक तरीका है। जैसे हजरत अख्तर थानवी रहमतुल्लाह अलैह, उनके एक अजल खलीफा थे हजरत ख्वाजा अजीजुल हसन मजजूब रहमतुल्लाह अलैह, खानकाह में थे, तरबियत इस्लाह के लिए रहते थे। एक मरतबा उनसे जरा बड़ी गलती हो गई, तो जब गलती हुई तो सरजनिश के लिए हजरत ने फरमाया कि अच्छा अपनी गठड़ी सर पे उठाओ और मस्जिद से निकल जाओ, इस्लाह के लिए ऐसी बात करनी पड़ती है। अब चूंकि तामील हुक्म करनी थी, उन्होंने अपना बिस्तर उठाया, मस्जिद से तो बाहर कदम रखा मगर दरवाजे के ऊपर ही बैठ गए। कहने लगे भाई हजरत ने यही कहा था ना कि मस्जिद से निकल जाओ, तो मैं मस्जिद से निकल गया, ये तो नहीं कहा था कि दरवाजे से भी दूर कहीं चले जाओ, तो मैं तो दरवाजे पे बैठा हूं। अब क्या होता, जो आने वाला आता दरवाजा खोलता, ये यूं करके देखते हजरत के चेहरे पे नजर पड़ जाते, फिर कोई और आता फिर चेहरे को देख लेते, एक दिन दो दिन। अब हजरत थानी रहमतुल्लाह भी बड़े हैरान कि मैंने कहा था चले जाओ, ये फिर दरवाजे पे बैठ गया। तो हजरत ने किसी बंदे को भेजा, भाई जाओ इससे पूछो ये चाहता क्या है, क्यों बैठा है यहाँ। तो जब उसने जाके पूछा तो शायर थे ना, उन्होंने आगे शेर में जवाब दिया, अगर तू दर न खोलेगा तो मैं भी दर न छोड़ूंगा, अगर तू दर न खोलेगा तो मैं भी दर न छोड़ूंगा, हकूमत अपनी अपनी है, इधर तेरी उधर मेरी। आपको निकालने का इख्तियार है और मैं दरवाजा नहीं छोड़ता, ये मेरा इख्तियार। हजरत इतना खुश हुए कि उसी वक्त उनको वापस बुला लिया। अब ये डेरे डालना अगर मोमिन की जिंदगी में देखें तो मोमिन रमजान में अपने घर से रुख्सत लेकर, दफ्तर से रुख्सत लेकर 10 दिन के लिए एतकाफ मस्जिद में आके डेरे डाल देते, ए अल्लाह बस मैंने दहलीज पकड़ ली, मना के ही उठूंगा आपको। तो देखें वो भी निशानी पाई गई कि मोमिन अपने रब को मनाने के लिए किस तरह डेरे डाल के बैठ जाता है, सुभान अल्लाह। तो अगर देखें तो मोमिन के अंदर वो तमाम सिफात हैं जो एक आशिक के अंदर होती है, और अल्लाह वाले तो ये होते हैं कि बस हर वक्त बात करते हैं तो अल्लाह की बात करते हैं। या तेरा तज़करा करे हर शख्स वरना फिर हमसे गुफ्तगू न करे, उनका दिल चाहता है जो बात हो बस अल्लाह ही की बात हो, ऐसे उनका दिल चाहता है, क्योंकि अल्लाह ताला उनके दिल में बस जाते हैं, अल्लाह उनके दिल में आ जाते हैं, अल्लाह उनके दिल में सिमा जाते हैं, बल्कि सच बात कहूं अल्लाह उनके दिल में छा जाते हैं। फारसी के कुछ अशआर हैं अजीब, लिखने वाले ने कहा, जान ज़े तन बुर्दी व दर जानी हुनूज़, ए महबूब तूने मेरे जिस्म से रूह तो मेरी निकाल ली और अभी भी मेरी रूह में बस तू ही रहा है। जान ज़े तन बुर्दी व दर जानी हुनूज़, दर्द हा दादी व दर मानी हुनूज़, ए महबूब दर्द भी मुझे आप ही ने दी है और इस दर्द की दवा भी तो आप ही तो हैं। जान ज़े तन बुर्दी व दर जानी हुनूज़, दर्द हा दादी व दर मानी हुनूज़, अश्कारासी न अम्बिश काफती हम चुना दरसी न पिन्हानी हुनूज़, ए महबूब आपने मेरे सीने को चीर चीर के खोल के रख दिया, अजीब बात है कि इसके बावजूद मेरे दिल में छुपे हुए आप ही हैं। अश्कारासी न अम्बिश काफती हम चुना दरसी न पिन्हानी हुनूज़, मुल्क दिल कर दी खराबज ते गनाज, ए महबूब आपने नाज की तलवार से मेरे दिल को तहवाला करके रख दिया, न कोई दुनिया की ख्वाहिश छोड़ी न कोई आखरत की ख्वाहिश छोड़ी, हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, आपने नाज की तलवार से मेरी हर तमन्ना को मेरे दिल से निकाल दिया, मगर अजीब बात है अंदरी वीराना सुल्तानी हुनूज, हर तमन्ना को रुखसत कर दिया और इस वीराने में भी अभी हुकूमत है तो आप ही की है। अजीब जान ज़े तन बुर्दी व दर जानी हुनूज़, दर्द हा दादी व दर मानी हुनूज़, अश्कारासी न अम्बिश काफती हम चुना दरसी न पिन्हानी हुनूज़, मुल्क दिल कर दी खराबज ते गनाज, अंदरी वीरान सुल्तानी हुनूज़। और आखिरी शेर तो बड़ा ही अजीब है, कहते हैं قیمت خود ہر دو عالم گفتائی. اے محبوب آپ نے اپنی قیمت دو عالم لگائی ہے کہ میری خاطر دنیا اور آخرت دونوں کی خواہش کو قربان کر دو. اے محبوب تو نے اپنی قیمت دنیا آخرت کی خواہش دل سے نکال دینا کہ صرف اللہ کی طلب رہے, ہر طلب دل سے مٹ جائے. قیمت خود ہر دو عالم گفتائی. اے محبوب آپ نے اپنی قیمت دو عالم کو قربان دینا کہا ہے. نرخ بالا کن کے ارزانی ہنوز. اے محبوب قیمت بڑھا دیجئے, آپ نے تو بڑا سستا سودا کر لیا. آپ کی خاطر دو جہان قربان کرنے کون سے مشکل کا. جن کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے یوں اللہ کے لیے قربان ہوتے ہیں. مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں گرمی کا موسم, دوپہر کا وقت, شدت کی گرمی تھی, ہر بندہ سائے میں تھا, پرندے درختوں کے پتوں کے سائے میں چھپے بیٹھے تھے. مجھے کسی کام کی خاطر اپنے گھر سے نکلنا پڑ گیا. میں جیسے ہی باہر نکلا تو میں نے گلی میں ایک افاہج کو دیکھا جس کی دونوں ٹانگیں جڑی ہوئی تھیں اور وہ سرینوں کے بل بیٹھا ایسے گھسٹ گھسٹ کے آگے جا رہا تھا. جب میں اس کے قریب ہوا تو میں نے دیکھا کہ دھوپ کی وجہ سے اس کی جلد سرخ ہو چکی جیسے جلتی ہے, پسینے میں شرابور جیسے نہایا ہوا ہے اور وہ چلتا جا رہا ہے. میں نے سلام کر کے پوچھا کہ تو کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں حج کے سفر پہ جا رہا ہوں. میں نے کہا کہ میرے گھر کے اندر آؤ, آرام کر لو, جب شام کو سورج کی گرمی کم ہو جائے گی تم پھر اس وقت سفر کر لینا. اس نے کہا مالک ابن دینار آپ تو پاؤں کے ذریعے آرام سے سفر طے کرتے ہیں, میں گھسٹ گھسٹ کے انچ بائی انچ آگے سفر طے کرتا ہوں, وقت زیادہ لگتا ہے, میں راستے میں رکنا نہیں چاہتا. ایسا نہ ہو کہ ادھر ایام حج آ جائیں اور میں ابھی راستے میں پھر رہا ہوں, میں رنمان میں کہیں نہیں رکوں گا, منزل پہ پہنچ کے دم لوں گا. میں نے کہا نوجوان میرے گھر تو آرام کر لے, میں تیرے لیے سواری کا بندوبست کر دیتا ہوں, گھوڑے کا انتظام کر دوں گا, تو گھوڑے پہ سوار ہو کے جلدی سفر کرنا, ایام حج سے پہلے پہنچ جائے گا. یہ بات سن کے اس نے میری طرف دیکھا, مالک ابن دینار میں تو تجھے بڑا عقل مند سمجھتا تھا, کیسی بات تو نے کر دی. میں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگا یہ بتائیں اگر کوئی غلام اپنے مالک کو ناراض کر بیٹھے اور پھر معافی کے لیے مالک کے سامنے جانے کا ارادہ کرے, بتاؤ پیدل جانا اچھا لگتا ہے یا سواریوں پہ سوار ہو کے جانا اچھا لگتا ہے؟ میں سمجھ گیا یہ عاشق ہے, ادب ہے اس کے اندر. چنانچہ اس نوجوان نے بات کی پرواہ نہ کی اور دھوپ میں چلتا رہا. اللہ کی شان اسی سال مجھے بھی اللہ نے حج کی توفیق عطا فرما دی. جب پہلے دن میں نے جمرہ عقبہ کو بڑے جو ہے جمرے کو کنکریاں مار لی تو اس کے وقت میں نے دیکھا لوگوں کا مجمع ہے, کچھ دیکھ رہے ہیں. پوچھا کون؟ کہنے لگے ایک نوجوان ہے, دعائیں مانگ رہا ہے, سب اس کی دعائیں سن رہے ہیں. میں نے کہا ذرا مجھے بھی راستہ دو. اندر دیکھا وہی نوجوان میں نے دیکھا, احرام باندھا ہوا تھا, اللہ سے دعائیں مانگ رہا تھا, اللہ سب لوگ پاؤں پہ چل کے سواریوں پہ چل کے تیرے گھر کی طرف آئے, میرے مولا میں تو گھسٹ گھسٹ کے تیرے گھر کی طرف پہنچا, میں نے تیرے گھر کا طواف بھی کیا, اللہ میدان عرفات کا وقوف بھی کیا, مزدلفہ کا وقوف کیا, اللہ اب میں نے اس شیطان کو کنکریاں مار کے اپنی نفرت کا اظہار کر دیا, میرے مولا اب قربانی کا وقت ہے. یہ سارے لوگ صاحب استطاعت ہیں, یہ جائیں گے جا کے جانوروں کو قربان کریں گے, اللہ تو جانتا ہے میرے پاس احرام کے سوا کچھ نہیں, اللہ میں اپنی جان آپ کے نام پہ قربان کرنا چاہتا ہوں, اللہ مجھ سے جان کا نذرانہ لے لیجئے. یہ کہہ کے اس نوجوان نے کلمہ پڑھا اور وہیں پر فوت ہو گیا. جن کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے وہ تو اللہ کے نام پہ اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں. تو یہ اللہ کی محبت ہر انسان کے دل میں ہے مگر اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے تاکہ ہم اس محبت کو بڑھائیں, ہمارے لیے پھر عبادت کرنا آسان, تلاوت کرنا آسان, نیکی کرنا آسان, گناہوں سے بچنا آسان. اللہ کی محبت ہر چیز کو آسان کر دیتی ہے. قاعدہ قانون ہے, ان المحب لما يحب مطيع, محب جس سے محبت کرتا ہے پھر اس کی عبادت خدمت کرنا پھر آسان ہو جاتا ہے, عبادتیں کرنی آسان ہو جائیں گی. اللہ تعالی ہمیں اپنی یاد والی زندگی نصیب فرمائے. عربی کے کچھ اشعار ہیں, سن لیجئے, پھر یہ عاجز اپنی بات کو مکمل کر دیتا ہے. کسی نے کیا اچھی بات کہی, فرماتے ہیں,
والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وأنت في قلبي ووسواسي.
اللہ کی قسم, کبھی سورج طلوع نہیں ہوا اور کبھی سورج غروب نہیں ہوا مگر اے محبوب میرے دل میں, میری سوچ دھیان میں تیری ہی تو ذات ہوتی ہے.
والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وأنت في قلبي ووسواسي ولا جلست إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي.
اور اللہ کی قسم میں کبھی اپنے دوستوں کی محفل میں نہیں جا کر بیٹھا مگر ان کی محفل میں تذکرہ اے محبوب تیری ذات ہی کا تمہیں کر رہا ہوتا.
ولا ذکرتک محزونا ولا طربا الا وحبک مقرون بانفاسی.
اور میں نے کبھی خوشی میں اور غم کی حالت میں آپ کا تذکرہ نہیں کیا مگر اے محبوب میرے سانسوں میں تیری محبت ہی تو لپٹی ہوئی ہوتی ہے.
ولا هممت بشرب الماء من عطش الا رأيت خيالا منك في الكأس.
اور اے محبوب میں نے کبھی شدت پیاس کے عالم میں پانی کا پیالہ نہیں پیا مگر اس حال میں کہ میں پیالے میں تیری تصویر ہی تو ڈھونڈ رہا ہوتا ہوں.
فلو قدرت علی الاتیان زرتکم صحبا علی الوجہ او مشیا علی الرأس.
اور اے محبوب اگر کبھی آپ کی طرف سے پیغام آ جائے کہ آؤ میرے دیدار کی خاطر تو اے محبوب میں اپنے رخسار اور اپنے سر کے بل چلتا ہوا آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا. تو جن کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے وہ تو پھر اللہ کے گھر اپنے سر کے بل چل کے جانے کو تیار ہوتے ہیں. اللہ ہمیں بھی اپنی ایسی محبت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
دعا سے پہلے بعض احباب نے پیغام بھیجا تھا کہ ہم توبہ کے کلمات پڑھیں گے, تو دل میں یہ نیت کر لیجئے ہم اپنی زندگی کے پچھلے سب گناہوں سے سچی پکی توبہ کر رہے ہیں, آئندہ نیکوکاری پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کا دل میں ارادہ کر رہے ہیں. جیسی نیت ہوتی ہے ویسی مراد مل جاتی ہے. نیت کیجئے اللہ ہمیں آئندہ سچی اور سچی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین استقاموا, اما بعد, یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع
احکامی ہی اقرارم باللسانی و تصدیقم بالقلب اشد واللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبده و رسوله استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین.
چند معمولات ہیں ہمارے مشائخ نے بتلایا ہے کہ اگر ان کو باقاعدگی سے کریں تو اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں بھر جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے. ایک ہے 100 مرتبہ استغفار صبح شام پڑھنا، دوسرا ہے 100 مرتبہ درود شریف صبح شام پڑھنا، تیسرا ہے قرآن مجید کی روزانہ تلاوت کرنا، ایک پارہ ہو تو بہت اچھا، مشکل ہو تو آدھا پارہ صحیح، چوتھا ہے چلتے پھرتے لیٹے بیٹھے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم، اس کا مستحق بن جانا. اور پانچویں چیز ہے کہ اپنے دل میں اللہ کو یاد کرنا. قرآن مجید میں ہے وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، مفسرین نے لکھا اَيْ فِي قَلْبِكَ، اپنے دل میں اللہ کو یاد کرو. تو اپنے دل میں اللہ کو یاد کرنا، آدھا گھنٹہ 20 منٹ بیٹھ کے اللہ سے لو لگانا، اس کو مراقبہ کہتے ہیں، ذکر قلبی کہتے ہیں. اس سے انسان کے دل کی بیٹری چارج ہو جاتی ہے، ایمانی کیفیت. جیسے آپ سیل فون روز یوز کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اس کی بیٹری ڈسچارج ہو جاتی ہے. اگر چارج کرنا بھول جائیں تو بیٹری ختم، بات چیت بند. ہم دفتر میں جب کام کرتے ہیں تو ہماری کیفیات کی بیٹری بھی روز ڈسچارج ہوتی ہے، تو اس کو شام کو چارج کرنا ضروری. اور یہ جو مراقبہ ہے یہ اس کو چارج کرنا، اللہ کی رحمت آ رہی ہے دل میں سے آ رہی ہے، ان چارجنگ ہو رہی ہے. دوسرے لفظوں میں یوں بندہ کہتا ہے، اور واقعی چارجنگ ہو جاتی ہے تو انسان کے لیے پھر نیکی پہ زندگی گزارنی آسان ہو جاتی ہے. ان اعمال کو کیجئے گا، اللہ تعالیٰ آسانی فرما دے. ابھی جو آپ کو مشق بتائی ذکر قلبی والی کہ اللہ کو دل میں یاد کرنا، آپ چند منٹ کے لیے ظاہر آنکھوں کو بند کر لیں، من کی آنکھوں کو کھول لیں، اللہ سے لو لگا کے بیٹھ جائیے. یہ سوچئے کہ میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے اور میں سن رہا ہوں.
اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. من کی دنیا سوز و مستی جذب و شوق، تن کی دنیا سود و سودا مکر و فن. من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، تن کی دولت چھاؤں ہے آتا ہے دھن جاتا ہے دھن. پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب پیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من. پانی پانی کر گئی مجھ کو تو مرشد کی یہ بات،
تو جھکا جب نفس کے آگے نہ تن تیرا نہ من. لا إله إلا الله محمد رسول الله سبحان ربي جلال الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اے کریم آقا، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئیں روئیں سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت کو پیدا فرما. اے کریم آقا، جو گناہ ہم نے دن میں کیے معاف فرما، جو راتوں میں کیے معاف فرما، جو محفل میں کیے معاف فرما، جو تنہائیوں میں کیے معاف فرما، جو ارادے سے کیے معاف فرما، جو بنا ارادے کے ہوئے معاف فرما، جو گناہ یاد ہیں وہ بھی معاف فرما، جو کر کے بھول گئے وہ گناہ بھی معاف فرما. اے اللہ، معصیت کی ذلت سے محفوظ فرما، ہمیں طاعت کی عزت نصیب فرما. اے اللہ، زندگی کے آخری حصے کو زندگی کا بہترین حصہ بنا، قیامت کے دن کو زندگی کا سب سے زیادہ خوشیوں بھرا دن بنا. اے اللہ، ہمیں علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کے کاموں سے محفوظ فرما. اے اللہ، عزت ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما. اللہ، اپنے قرب کے بعد دوری سے محفوظ فرما. اللہ، دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے بھی محفوظ فرما، نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما. اللہ، ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرما. اے اللہ، ہم آپ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتے، ہمارے نفس امارہ ہیں، شیطان بدبخت پیچھے لگا ہے. اللہ، ہمارے نفس کو نفس مطمئنہ بنا دیجئے. میرے مولا، ہم پر رحمت کی نظر فرمائیے. اللہ، آپ کے سامنے کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا، ہماری حالت آپ جانتے ہیں. صبح توبہ کرتے ہیں، شام توڑ بیٹھتے ہیں، شام توبہ کرتے ہیں، صبح توڑ بیٹھتے ہیں، ایک قدم آگے بڑھنے لگتے ہیں، کئی قدم پیچھے پھسل جاتے ہیں. اے اللہ، مہربانی کر دیجئے. اللہ، جب بچہ چلتے چلتے تھک جاتا ہے، باپ کو کہتا ہے ابو اٹھا لیجئے، باپ خود بھی تھکا ہو مگر بچے کو ضرور اٹھا لیتا ہے. اللہ، ہم اپنے نفس سے لڑتے لڑتے تھک گئے. اے مولا، اب ہمارا رات اپنی رحمت سے پکڑ لیجئے. اللہ، ہمیں سہارا دے دیجئے. اے اللہ، ہمیں نفس کے مقابلے میں جیتنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اللہ، ہم پر رحمت کی نظر فرما. کریم آقا، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. اللہ، آپ کے پیارے یوسف علیہ السلام کریم تھے، بھائیوں کو معاف کرتے ہوئے کہہ دیا تھا، لا تصریب علیکم اليوم، آؤ جاؤ آج تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں. اللہ، آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریم تھے، فتح مکہ کے دن انہوں نے قریش مکہ کو یہی الفاظ کہے تھے، لا تصریب علیکم اليوم، جاؤ تمہارے اوپر کوئی قصور نہیں، معاف کر دیا. اللہ، آپ سب کریموں سے بڑے کریم ہیں، اور آپ کو اپنی شان کریمی پہ بڑا ناز ہے. آپ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ اس کے تذکرے کیے ہیں. اللہ، آج شان کریمی کا ظہور فرما دیجئے. آپ بھی اپنے بندوں کو کہہ دیجئے، لا تصریب علیکم اليوم، اذهبوا انتم الطلقاء. اے کریم آقا، آپ مہربانی کر دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ قصوروں کو معاف کر دیجئے، اللہ آئندہ نیکوکاری کی زندگی عطا فرما دیجئے، گھروں کی پریشانیوں کو دور فرما، کام کاروبار کی پریشانیوں کو دور فرما، اٹکے کاموں کا ہونا آسان فرما، الجھے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا. اللہ، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. ہدایت کی ہواؤں کو عام فرما, بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرما, اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری بار بار قبولیت والی نصیب فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما, بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما, جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا, فرما بردار بنا, ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اللہ ان مقامی دوستوں نے جس محبت کے ساتھ یہاں بلایا اس کے بدلے ان کو اپنی سچی محبت نصیب فرما. اس مسجد کو اللہ نیک متقی نمازیوں سے آباد فرما, سب نمازیوں میں آپس میں الفتیں محبتیں پیدا فرما. اے کریم آقا, ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.